मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 30 जून 2017 है, जून का अंतिम दिवस और दिन है शुक्रवार। और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट के लिए मैंने जो विषय चुना है अब वह पहले के विषय से हटकर है, लेकिन पूरी तरह अलग भी नहीं है। कहीं ना कहीं इसकी नाल आप कह लीजिए कि हम जिस डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहे हैं, प्रणाली और प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, नियम के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यह उससे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा ही हुआ है। मित्रों, आज मैं आप सबसे जिस पर अपने विचार शेयर करने जा रहा हूं वह है डेडिकेशन वर्सेस हार्ड वर्क, जिसे हम कहेंगे समर्पण बनाम कठिन परिश्रम। आप सब इन दोनों शब्दों से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, और जब कहीं भी आप मोटिवेशनल लेक्चर सुनेंगे तो हर कोई यही कहता है कि अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहिए और खूब मेहनत कीजिए, और यदि यह है तो फिर आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे। और यदि वे ऐसा कहते हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं कहते। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, एक दो प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। आप लोग भी इस पर थोड़ा सा विचार करें, अपने अपने ढंग से विचार करें, क्योंकि जब यह क्षमता आपके अंदर आएगी कि आप किसी भी घटना को, किसी भी तथ्य को अपने अपने नजरिए से देख सके। देखिए, अभी तो आप मुझे सुन रहे हैं तो आप मेरा नजरिया सुन रहे हैं, और उस पर विश्वास कर पाना, पूरा या आधा अधूरा विश्वास कर पाना, या पूरी तरह से आपके ऊपर है। लेकिन जब आप मेरी बातों पर विचार करने लगेंगे और विचार करने के बाद आप उस पर विश्वास करेंगे या उसे रिजेक्ट करेंगे, तब वह आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसलिए मित्रों, मैं आज के इस लेक्चर की शुरुआत आपसे एक छोटे से प्रश्न से कर रहा हूं, बल्कि दो प्रश्नों से कर रहा हूं। पहला तो यह है फ्रेंड्स कि जब हम समर्पण और कठिन परिश्रम की बात करते हैं तो क्या ये दोनों एक हैं? और यदि दोनों एक नहीं हैं तो दोनों में मूल अंतर क्या है? या चलिए अगर हम यही मान लें कि ये दोनों एक हैं तो वो दोनों एक कैसे हैं? पहला सवाल यह है। बेहतर होगा कि आप लोग भी इस पर विचार करें। और दूसरा मेरा प्रश्न ये है फ्रेंड्स कि यदि ये दोनों एक नहीं है, मान लीजिए आपका यह उत्तर है, तो फिर दोनों में से बड़ा कौन है या प्रमुख कौन है? अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों में से आपको एक का चुनाव करना है तो आप अपनी अपनी जिंदगियों के लिए आप सब किसका चुनाव करेंगे, समर्पण का या हार्ड वर्क का? दोस्तों, मैंने जानबूझकर के ये विषय इसके कंटिन्यूएशन में चुना है क्योंकि मुझे लगा कि हमारे जो नौजवान साथी हैं या और भी जो दूसरे मेरे प्रिय श्रोता हैं, वो इन दोनों के अंतर को अगर या बारीकी को थोड़ा सा समझ लेंगे तो शायद उन्हें अपने आप को उसके अनुकूल ढालने में, उन तत्वों को एक्सेप्ट करके अपने आचरण में लाने में कहीं न कहीं ज्यादा आसानी होगी, थोड़ी सी सुविधा होगी। और जब कोई चीज सुविधाजनक हो जाती है तो निश्चित रूप से हम थोड़े से उसके प्रति आकर्षित होते हैं, लालायित होते हैं, और हमें लगता है कि चूंकि हम इसे कर सकते हैं तो करने भी लगते हैं। मित्रों, इसीलिए मैंने इस विषय को चुना है। आप सब अपनी अपनी तरफ से इस पर विचार करें। मैं अपनी तरफ से जो मेरे अपने विचार हैं वह मैं आप लोगों के सामने दोस्तों रख रहा हूं। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी शायद यह निष्कर्ष निकालने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी कि दोनों एक तो नहीं है, बावजूद इसके कि वो उनमें कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष संबंध भी है। मतलब दोनों जुड़वा भाई नहीं है, दोनों सगे भाई भी नहीं है, लेकिन दूर दराज के भाई जरूर हैं। मैं ये मेरे अपने विचार हैं, आप लोग इस पर अपने ढंग से सोचें। मित्रों, जब हम डेडिकेशन की बात करते हैं तो देखिए, डेडिकेशन का मतलब है कि आपने कोई भी एक उद्देश्य चुना है, या किसी व्यक्ति के प्रति, किसी काम के प्रति, या किसी के भी प्रति, चाहे वो फिर ईश्वर ही क्यों न हो, अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया है। जब हम समर्पित करने की बात करते हैं तो भारतीय चेतना में, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूं, एक जो संकट पैदा होता है मित्रों, और जिस संकट से मैं बहुत ज्यादा घबराता हूं वह यह होता है कि यदि मैंने समर्पण कर दिया है तो फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपने को समर्पण कर दिया ना। अब मैंने जिसके प्रति अपने आप को समर्पण किया है वो करे। भक्ति के क्षेत्र में इसकी परिभाषा यही है कि हे ईश्वर, अब तू ही सब कुछ करने वाला है, मैं तो तेरी शरण में आ गया हूं, अब तुमको जो करना हो करो, मैं तो तुम्हारा भजन कीर्तन करूंगा, गुणगान करूंगा, पूजा पाठ करता रहूंगा, तुम्हारी चरणों में पड़ा रहूंगा, तुम्हारी अब जो मर्जी जैसा चाहो वैसा करो। ये जो भक्ति का जो ये भाग है मित्रों, जब हम इसको जीवन पर अप्लाई करते हैं तो सच पूछिए तो वहां इसके परिणाम बिल्कुल विपरीत होते हैं। देखिए, जब हम समर्पण की बात करते हैं तो यहां मुझे लगता है कि इस बात को हम सभी को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि समर्पण महज एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन है, केवल एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। मनोवैज्ञानिक स्थिति का मतलब है कि हमने किसी उद्देश्य का निर्धारण किया और हमने अपने आप को उस उद्देश्य के प्रति समर्पित कर दिया, या यूं कह लीजिए कि उस उद्देश्य को ही हमने अपना धर्म मान लिया, हमने अपना ईश्वर मान लिया, जो भी आप कहना चाहें। तो हमने उसके प्रति अपने आप को पूरी तरह मनोवैज्ञानिक रूप में समर्पित कर दिया। मनोवैज्ञानिक रूप में समर्पित कर देने का मतलब है कि अब मैं अपने उद्देश्य पर किसी तरह का कोई डाउट नहीं करूंगा, शंका नहीं करूंगा। जैसे हमने, अगर मैंने ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया अपने आप को, तो मैं ईश्वर के प्रति फिर कोई शंका आशंका नहीं करता कि ये ईश्वर है भी कि नहीं है, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं। मैंने तो एक विश्वास किया है, विश्वास को कहीं प्रेम में कन्वर्ट कर दिया, प्रेम आगे चल करके श्रद्धा में कन्वर्ट हो गया और धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ करके भक्ति बन गई, और जैसे ही भक्ति बनी वो जो समर्पण है वो 100% हो गया। भक्ति जो है वो समर्पण की चरम सीमा है जिसकी शुरुआत विश्वास से होती है, क्योंकि जिस पर आपको विश्वास नहीं होगा उसके प्रति तो आप समर्पित भी नहीं हो सकेंगे। तो ये उसके अलग अलग चरण हैं। जैसे जैसे मेरे समर्पण की मात्रा बढ़ती जाती है, उसमें सघनता आती जाती है, यानी डेंसिटी आती जाती है, या कह लीजिए कि उसमें डेप्थ आती जाती है, तो मेरा विश्वास मेरे प्रेम में तब्दील होता है, फिर मेरा जो प्रेम है वह श्रद्धा में तब्दील होता है, और फिर मेरी वह जो श्रद्धा है अंत में भक्ति में तब्दील हो जाती है। मित्रों, ऐसा मत समझिएगा कि ऐसा तो सिर्फ व्यक्ति के प्रति होता है, ईश्वर के प्रति होता है, नहीं, यह हमारे अपने उद्देश्यों के प्रति भी होता है और यह हमें अपने काम के प्रति भी होता है। यह होता है, बहुत लोगों को जाकर के देखिए कि काम के प्रति क्या श्रद्धा दिखाई देती, क्या भक्ति भाव दिखाई देता है। आपको मैं एक कोट याद दिलाना चाहूंगा जो प्रोमिनेंटली मैं जहां भी अवसर मिलता है मैं उसे दोहराता हूं और यहां भी दोहराना चाहूंगा, और आप कलाम साहब की जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है अग्नि की उड़ान उसे पढ़ें, उसमें उन्होंने साफ तौर पर बड़ी खूबसूरत लाइनें कही हैं। मैं एग्जैक्ट वर्ड तो यहां नहीं रख पा रहा हूं, उनके शब्दों को नहीं दोहरा पा रहा हूं, लेकिन उसका आशय ये था, उन शब्दों का आशय ये है कि मैं जब अपने लैब में काम करने जाता था तब मैं अपने जूते लैब के बाहर ठीक उसी तरह से उतार देता था जैसे कि मेरे अब्बू मस्जिद में जाने से पहले अपनी चप्पलें मस्जिद से बाहर उतार देते थे। अब आप देखिए कि क्या है, मतलब उनके जो कलाम साहब के अब्बू हैं मस्जिद जा रहे हैं, यानी कि वो अल्लाह के पास जा रहे हैं, अल्लाह के किस नजदीक जा रहे हैं, अल्लाह के याद करने जा रहे हैं, जो भी कह लीजिए, मस्जिद एक पवित्रतम स्थल है जिसे हम देव स्थल कहते हैं, वहां वो जा रहे हैं, तो चप्पल बाहर निकाल दे रहे हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि वो पवित्र स्थान है तो चप्पल बाहर उतार के जाओ, ठीक है। लेकिन कलाम साहब के लिए मस्जिद क्या है, वो उनका लैब है, इसीलिए उन्होंने तुलना की है अपने अब्बू के मस्जिद से अपने लैब की तुलना की है। यहां सवाल चप्पल उतारने और जूते उतारने का नहीं है, यहां सवाल उस रिलेशनशिप का है, उस संबंध का है जो दोनों महसूस कर रहे हैं, यानी कि मेरे अब्बू अल्लाह के साथ जो अपना संबंध महसूस करते थे वही संबंध मैं अपने लैब के साथ महसूस करता हूं और लैब उनका काम है। तो यहां जो महसूस करने की बात है वो क्या है, वो एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन है, एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। तो मित्रों, ये जो समर्पण है ये महज एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है, इसका कोई भी विरोध, रत्ती भर भी विरोध कर्म से नहीं है। आप देखिए कि हमारे भक्ति काल के जो सबसे बड़े बड़े महान भक्त संत हुए हैं, चाहे वो रैदास हों, चाहे वो गुरु नानक देव हों, चाहे आप बहुत से हुए हैं, एक दो नाम नहीं है, बहुत से हुए हैं भक्ति काल के जो संत हुए हैं, कबीर दास हो, ये सब क्या थे? कोई इनमें से जुलाहा है, कोई इनमें से नाई है, कोई इनमें से जूते बनाने का काम कर रहा है, चर्मकार है, सोचिए ये सब है। और मजेदार बात है कि अपना काम भी कर रहे हैं, जूते भी बना रहे हैं और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी भजन भी कर रहे हैं। तो इन्होंने तो अपने आप को ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर दिया था, लेकिन क्या उस समर्पण के दौर में या उस पूरे की पूरी प्रक्रिया में उन्होंने अपने को कर्म से विड्रॉ कर लिया? कर्म कर ही रहे हैं। कबीर दास भी उतने ही बड़े भक्त हैं जितना बड़ा भक्त कोई और हो सकता है, वो दार्शनिक भी हैं, लेकिन साथ ही साथ वो जुलाहे भी हैं, कपड़े बुन रहे हैं, बुन ही नहीं रहे हैं बल्कि कपड़े बेच भी रहे हैं और ईश्वर की भक्ति भी कर रहे हैं और 100% समर्पण के साथ भक्ति कर रहे हैं। तो आप जब इनके जीवन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, यहां तो कर्म से विमुखता है ही नहीं। दोस्तों, यहां जो कर्म है इसे ही अभी आप कह लें हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। अब ये जो परिश्रम है और ये जो कठिन परिश्रम है, ये इसमें थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है। सच पूछिए तो मैं, अगर मेरा जोर चले और मुझे आप इजाजत दें, तो इसमें से मैं कठिन शब्द को विड्रा करना चाहूंगा। परिश्रम मतलब परिश्रम, इस पर हम लोग आगे बातें करेंगे। तो मित्रों, मैंने समर्पण के बारे में आपसे थोड़ी सी बातें कही हैं जो मेरे दृष्टि से एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। आप लोग भी इस पर विचार करें और देखते हैं, हो सका तो इस एपिसोड को, फिर इसी विषय को मैं अगले एपिसोड में फिर आपके सामने और विस्तार के साथ और नए तथ्यों के साथ रखना चाहूंगा। तो मित्रों, अब अंत में एक छोटी सी सूचना है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि आज है शुक्रवार, तो शुक्रवार के बाद आपको मालूम है कि शनिवार और रविवार को लाइफ मैनेजमेंट नहीं आता है। तो मित्रों, दो दिन के लिए अब मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा, सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी, अनुमति दें। नमस्कार।